नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमोद्वैततत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणि व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्कर्तृपात्र प्रहर्त्र, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चये पदानां नियन्त्रितमेकं, परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं, भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः, भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। नमस्ते सबको। मनुस्मृति का ये श्लोक है, शुभा शुभ फलम कर्म मनोवाग देह संभवम, कर्म जागतयो नृणा मुत्तमा धम मध्यमा। एक्शंस प्रोसीडिंग फ्रॉम माइंड स्पीच एंड बॉडी आर कंड्यूसिव टू गुड एंड बैड रिजल्ट्स, and the conditions of men due to actions are high, low and middling. Last time humne discussion kiya tha, har karma ka phal nishchit hai. Manusmriti ka ye shlok kehta hai, jo kuch bhi hum man se karte hain, vani se karte hain, athava sharir se karte hain, उन सब का फल हमें ही भोगना पड़ता है। वो फल अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, एवरेज हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इस क्रम में हमने ये जाना कि जब भी हम कोई काम करते हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने तीन तरह से आता है, और उन तीन तरह के रिजल्ट के अनुसार हमने कर्मों को तीन तरह से बांटा। एक रिजल्ट जो हम काम करते हैं और इंस्टेंटली हमें मिल जाता है, जिसे हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। एक रिजल्ट कर्म का फल जो हम करते तो जाते हैं पर मिलता है नहीं, अच्छा कर रहे हैं पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा कर रहे हैं बुरा नहीं हो रहा है, काम कर रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा है, दवाई खा रहे हैं बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मतलब अभी नहीं हो रहा, इंस्टेंटली नहीं हो रहा है, क्या पता फ्यूचर में हो। जो इंस्टेंटली नहीं हो रहा है तो किसी को लगता होगा बेकार जा रहा है, ये लॉ कहता है कि नहीं वो बेकार नहीं जा रहा है, अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो उसको फल देने के लिए रोकते हैं। वो सब आपकी संचित अकाउंट में जा रहा है, सेविंग अकाउंट में जा रहा है, वो अपने हिसाब से इन फ्यूचर भविष्य में अपने हिसाब से वो फल देगा, हो सकता है तब आपको वो याद ना रहे, उसको कहते हैं संचित। और वही संचित जो हमने काम करते गए पास्ट में भी जो हमने किया अथवा अभी जो हम कर रहे हैं, जिनका फल हमें नहीं मिला था पास्ट में, वो सब सेविंग अकाउंट में हमारे जमा हुए थे, जब वो फल देने लग जाते हैं तब हमें याद हो ना हो, मतलब जब हमें लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं, मुझे क्यों मिल रहा है? बुरा नहीं किया, बुरा हो रहा है। अच्छा नहीं किया, अच्छा हो रहा है। मैंने पैसा कमाने के लिए अभी कोई काम नहीं किया, पर इतना सारा पैसा अचानक आ गया। पैसा खर्च करने के लिए अभी कुछ नहीं किया, पर पैसा बैंक खाली हो गया। मैं गाड़ी तो रास्ते में ठीक ठीक चला रहा था, पर एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरा खराब तरीके से चला रहा था, जो भी गाड़ी चलाने का रूल है कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा था, तब भी मैं 50 माइल 100 माइल ठीक ठीक पहुंच गया। मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो ना हो करके कुछ उल्टा हो रहा है, अच्छा हो रहा है या सही हो रहा है। ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है बिना किए, वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। प्रारब्ध अर्थ शुरू हो गया। क्या जो हमारे अकाउंट में कर्म पहले हमने किया था, पड़ा हुआ था, अब वो उसका प्रेरक तत्व सब आ चुके हैं। प्रेरक तत्व मतलब जो उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो सब आ चुके हैं, तो वो रिजल्ट देने लग गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में कोई स्टोर रूम होगा जहां आप गेहूं रखते हैं, धान रखते हैं, साबुत दाल रखते हैं, होल दाल पड़ा रहता है, सालों साल पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं होता है। और एक दिन आपने एक मुट्ठी धान या गेहूं उठाया, अपने बैकयार्ड में कहीं डाल दिया, मिट्टी खोद के थोड़ा पानी डाल दिया, 2-4 दिन तक उसमें धूप पड़ता रहा, पानी डालते रहे। 2-4 दिन के बाद देखा कि वो बीज जो है वो फटने लगा और उसमें से एक प्लांट आने लगा। तो 1-2 साल तक वो सीड, वो धान, वो गेहूं, वो दाल आपके घर में पड़ा हुआ था। इसका मतलब जब वो घर में पड़ा हुआ था वो बेकार पड़ा हुआ नहीं था, तब भी उसके अंदर वो स्प्राउट आने की पोटेंशियल पूरा था, प्लांट बनने की पूरी पोटेंशियल उसके अंदर था। पर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एक सीड से, एक बीज से प्लांट बनने के लिए जो बाकी हेल्पिंग फैक्टर चाहिए, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह, वो नहीं था। और जैसे ही ये सब मिलने लगे तो बीज में से पौधा निकलने लगा। अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो तो कहेगा, देखो ये बीज में से पेड़ कहां से निकला? और वो पेड़ जो 1 साल 2 साल 5 साल के बाद इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, आपका बच्चा आपसे पूछता है, इतना बड़ा पेड़ कहां से पैदा हुआ? आप अपने घर के अंदर गए, एक छोटा सा बीज लाए, ये बड़ का पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा होता है बड़ का पेड़, बरगद का पेड़। तो आपके छोटा बच्चा ने पूछा होगा, ये कहां से पैदा हुआ? आपने दिखाया, देखो ये इसका बीज है, और उसका रेत की तरह बहुत छोटा बीज होता है, इससे इतना बड़ा पेड़ पैदा हुआ। जी हुआ, पर अभी तो क्यों नहीं हो रहा है? आपके घर में बीज रखा हुआ, अभी नहीं होगा। तो वो फाड़ के देखता है, बोले कहां है वो बड़ का पेड़ अंदर? कहीं नहीं मिलेगा। संचित के रूप में होता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे ही उसको दूसरे फैक्टर्स जो उसको प्लांट बनने में हेल्प करते हैं आ जाते हैं, वही छोटा सा बीज में से प्लांट शुरू हो जाता है, बड़ा होकर के बरगद का पेड़ हो जाता है। जो बीज से पौधा पैदा होना, वो जो पौधा है वो प्रारब्ध है, और जो बीज है वो आपका संचित है, वो पड़ा रहेगा सालों, महीनों, वर्षों, हजार वर्षें और लाखों जन्म तक, कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों करोड़ों कल्प तक भी वो पड़ा रहेगा, जब तक उसको अपने हिसाब से इकोसिस्टम ना मिले, तो वो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका अर्थ नहीं है कि आपका काम बिगाड़ गया, मिलेगा। तो उसी को कहते हैं संचित। लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया, वो संचित कर्म कैसे काम करता है, तो उसको थोड़ा रिवाइज करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके दो रिजल्ट होते हैं, एक तो विजिबल रिजल्ट, एक इनविजिबल रिजल्ट। विजिबल रिजल्ट, आपने कुछ किया वो आपको दिखाई दिया, आपको गुस्सा आया, आपने चिल्लाया, किसी को चोट पहुंचा, नुकसान हुआ, तो ये तो हो गया विजिबल रिजल्ट। इनविजिबल रिजल्ट क्या है कि आपके अंदर एक संस्कार बना, एक मेमोरी बना आपका माइंड में, और वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में वो चला जाता है। मतलब आप भूल जाते हैं, पर वो जो गुस्सा आपने किया उसका जो भी रिजल्ट हुआ, आपने एक्सपीरियंस किया, वो सब आपकी मेमोरी में रहा। बार बार आप गुस्सा करते रहे, नए नए एक्सपीरियंस होते गए, वो सब आपकी मेमोरी में इकट्ठा होता गया, और धीरे धीरे आपकी जो पर्सनालिटी है 2 साल 5 साल के बाद वो संस्कार मॉडिफाई करने लगा। अब आप गुस्से से गुस्सा करने में डरते हैं या ज्यादा गुस्सा करते हैं, या कहीं गुस्सा करते हैं कहीं नहीं करते हैं, ये सब आप डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन आपकी वो जो पुराना मेमोरी है, उसी को हम कहते हैं संस्कार, इंप्रेशंस और सबकॉन्शियस मेमोरीज। मोस्ट ऑफ टाइम ये जो संस्कार है हमारे द्वारा किए गए कर्मों का, ध्यान रखिए हर वो छोटा सा छोटा कर्म हम करते हैं उसका दो तरह का रिजल्ट, एक तो जो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता ही है, दूसरा जो संचित, जो उसका एक इनविजिबल रिजल्ट जो संस्कार के रूप में पैदा होता है। संस्कार शब्द से आपको थोड़ा मुश्किल हो समझने में, स्मृति समझ सकते हैं, मेमोरी समझ सकते हैं। वो जो सबकॉन्शियस मेमोरी है वो धीरे धीरे डॉर्मेंट स्टेट में दबा हुआ पड़ा रहता है आपके अंदर, और कब तक पड़ा रहता है, हजारों साल हो सकता है, लाखों साल भी हो सकता है, करोड़ों साल भी हो सकता है, वो आपके साइक के अंदर पड़ा रहता है, उसी को कहते हैं संचित कर्मा। और जब वो तब तक इनएक्टिव रहता है, जैसे ही उसको स्विचेबल स्टिमुलेंट मिलता है तो पैदा होने लगता है। ये हमने डिस्कस किया था कैसे हमारा कर्म हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है, अभी का कर्म फ्यूचर को डिसाइड करता है, फ्यूचर कर्मों को नहीं, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी वो डिसाइड करता है कि हम आगे जाकर हमारी पर्सनालिटी कैसे होगी, ये डिपेंड करता है कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। किया है मतलब फिजिकली नहीं, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या रियलाइज किया है, क्या हमने फिजिकली किया है, क्या मेंटली हमने क्या बाहर से लिया है, वो सब उन सब का जो एक होल है। तो कोई भी काम आप करते हैं वो सबकॉन्शियस मेमोरी बन जाता है संस्कार, संस्कार टेंडेंसी के रूप में धीरे 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 आपकी टेंडेंसी बन जाती है, हर चीज में आप एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करने लगते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दैट टेंडेंसी, वासना आपके अंदर एक पर्टिकुलर डिजायर पैदा होता है किसी चीज को देखने के बाद, या तो आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो चलेगा, कैसे भी हो चलेगा। फिर धीरे धीरे वो वासना जब बहुत दृढ़ होती है, टेंडेंसी जब स्ट्रांग होती है, तो वो आपके फिजिकल बिहेवियर में, फिजिकल बिहेवियर मतलब आपके मेंटल फिजिकल एंड वर्बल बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड वृत्ति। और वो वृत्ति कैसे बनती है, आपकी थॉट प्रोसेस से। आप किसी चीज को देख करके जो अचानक आपके दिमाग में थॉट आता है वही है वृत्ति, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके बॉडी में रिएक्शन पैदा होने लगता है। कुछ चीजें आप एक्सप्रेस करते हो, कुछ चीजों को अंदर दबा लेते हो, किसी को देख के आपको गुस्सा आया, हो सकता है आपने गुस्से को बताया नहीं, गुस्सा को पी लिया, पर गुस्सा आता है और आपके बॉडी को माइंड को वो इफेक्ट करता है। इस तरह कर्म संचित कर्म काम करता है। संचित कर्म को समझने का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे आपके कंप्यूटर में ड्राइव होता है, ये फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव जिसको कहते हैं, या चिप होता है जैसे जिसमें सीडी वगैरह आप चलाते हैं, वो सीडी क्या चीज है, उसमें आपने कुछ गाना गाया, कुछ आपने बोला, किसी की साउंड आ रहा है, अपने आप को म्यूट में रखिएगा प्लीज सब। तो आपने कुछ गाना गाया, कुछ बोला, वो सब रिकॉर्ड होकर के उस सीडी में है। वो सीडी अपने आप नहीं बजेगा, आपने किसी कंप्यूटर में लगाया या सीडी प्लेयर में लगाया, जो जो आपने रिकॉर्डिंग कर रखा है सर, वही वही बजने लग जाता है। अब एक कंप्यूटर से निकालते हो, दूसरे कंप्यूटर में लगाओ, वहां भी बजने लगेगा। कंप्यूटर से मीडिया है, ये संचित कर्म वैसे ही काम करता है, चिप की तरह। माइथोलॉजी में, हमारे हिंदू पुराणों में जिसको माइथोलॉजी कहते हैं, तो उसमें कैरेक्टर आता है। जब व्यक्ति मरता है ना तो सामान्य लोग क्या कहते हैं कि यमराज ले जाता है। यमराज कौन है? मृत्यु की देवता। लेकर क्या करता है? तो अपने दूतों के द्वारा आपका प्राण ले जाता है, और अपने ऑफिस में जाता है तो वहां एक एक्सपर्ट बैठे हैं, मुनीब, जो जिसको आज आप आजकल आप कहते हैं डाटा एनालाइज करने वाला, उनका नाम है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त से पूछते हैं, बताओ भाई इनकी पूरी कुंडली निकालो, क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो चित्रगुप्त बताता है, जी इनकी लाइफ में ये अच्छा है, ये बुरा है, तो इसको कहां भेजे, स्वर्ग भेजो, नर्क भेजो, यहां भेजो, मनुष्य बनाओ। ये पौराणिक कथाएं हैं, मतलब इनको सच समझने की जरूरत नहीं है, पौराणिक कहानियां हैं। पर उसमें जो कैरेक्टर है, जो यमराज का जो असिस्टेंट है, जो टेक्निकल असिस्टेंट मंत्री, उसका नाम है चित्रगुप्त। ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, चित्रगुप्त। ये चित्रगुप्त का लिटरेरी ट्रांसलेशन क्या है? चित्र कहते हैं पिक्चर, गुप्त मतलब हिडन, छुपा हुआ, छुपा हुआ पिक्चर। और जो जरूरत पड़े वो काम करने लगे। चित्रगुप्त के पास सारा इंफॉर्मेशन होता है, जब चाहिए वो निकाल देता है। बिल्कुल वैसे ही जिसको आजकल आप माइक्रोचिप कहते हो, फ्लैश ड्राइव कहते हो, ड्राइव कहते हो, सीडी कहते हो, क्या है? ये चित्रगुप्त है, सब कुछ उसके अंदर स्टोर है। आप कंप्यूटर में लगाओ अपने, कोई भी आपके पास गैजेट है उसमें आप यूज करो, तो वो सारा सामने आ जाता है। हमारे लाइफ में मन, माइंड, इसी का नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त पुराणों में तो एक कहानी का एक चरित्र है, एक पर्सनालिटी है, ये इसी मन का ही वो पर्सोनिफाइड फॉर्म है। सच ये है कि आपका मन का दूसरा नाम है चित्रगुप्त। आपके किए हुए सारे कर्मों का रिकॉर्ड इसी माइंड में होता है, सबकॉन्शियस मेमोरी में, साइक में होता है। और वही माइंड जो चित्रगुप्त के रह तरह काम करता है, वो कंस्टेंटली आपके हर छोटी छोटे व्यवहार को रिकॉर्ड करता रहता है। अथर्ववेद में मंत्र आता है कि मत सोचना कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम कोई काम छुप के कर रहे हो, ढक के कर रहे हो, दो लोग मिलके सबको सबसे दूर एकांत में कुछ कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। मत भूलो वरुण देख रहा होता है। वरुण वो परमात्मा का नाम है जो सारे संसार में व्याप्त है, कण कण में, अंतर्यामी के रूप में। कोई देखे ना देखे वो परमात्मा सब देख रहा है, ये आत्मा सब देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये तुम्हारा माइंड में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तुम छुपा के करते हो, दिखा के करते हो, दिखा के करते हो तो पब्लिक को पता लगता है, दिखा के करते हो तो किसी को नहीं पता लगता। हमारे हर इंसान के लाइफ में दो लाइफ है, एक तो जो हमारा व्यवहार जो सबको पता है, एक जो किसी को नहीं पता सिवाय मुझे, ना पति को, ना पत्नी को, ना माँ बाप को, ना बच्चों को, ना फ्रेंड्स को, किसी सबको आपके लाइफ के बारे में कुछ कुछ पता है। और वो कुछ कुछ पता होने के बाद भी वो दावा करते हैं, मैं इसके बारे में सब जानता हूं। एक मनुष्य के अंदर क्या चल रहा होता है, कुछ चीजों को देखने सुनने एक्सपीरियंस करने के बाद क्या अंदर थॉट प्रोसेस होता है, उसका आधा तो छोड़िए उसका 20% भी किसी को नहीं पता होता है, सब माइंड में रहता है, खुद में वो कंस्टेंटली रिकॉर्ड होता रहता है। इसीलिए हर मन, हर आदमी का अपना मन, उसका अपना चित्रगुप्त है, पर्सनल असिस्टेंट है आपका माइंड, सब रिकॉर्ड रखता है। जब जरूरत पड़ता है तो वो काम करने लगता है, इवन मरने के बाद भी, अगले जन्म में आपको क्या जन्म मिलेगा वो उसी से डिसाइडेड हो, वही चित्रगुप्त, वही आपका मन से डिसाइडेड होता है। यजुर्वेद का ये मंत्र, सॉरी ये योग दर्शन, पतंजलि के योग दर्शन का ये मंत्र है, ये सूत्र है, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। जब तक तुम्हारे अंदर अज्ञान आदि क्लेश है, तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें उसका दो तरह के फल मिलते हैं, दृष्ट फल अदृष्ट फल। कुछ फल जो आप इस लाइफ में, दृष्ट जन्म में जो लाइफ अभी है उसी में आप एंजॉय करते हो, कुछ फल आपको अनसीन लाइफ अदृष्ट जन्म में मरने के बाद मिलेगा, जो लाइफ आपने देखा नहीं वहां मिलता है। और वो जो कर्म का फल हमें मिलता है वो तीन तरह से मिलता है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। ये भी योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 13वां सूत्र है पतंजलि का। जब तक वो आपके अंदर वो कर्म, कर्माशय है, कर्म का संस्कार है, कर्म का संस्कार, वही संस्कार जिसकी चर्चा हम ही कर रहे, अभी हम कर रहे थे, सबकॉन्शियस मेमोरी चित्रगुप्त के रूप में, वो जब तक वो चित्रगुप्त बैठा है, आपका कर्म संस्कार जमा हुआ है, तब तक उसका फल मिलता रहेगा अपने अपने टाइम पर। और वो जो फल मिलेगा वो तीन तरह से मिलेगा, जाति लाइफ स्टेट, आयु लाइफ स्पैन, भोग लाइफ एक्सपीरियंस। किस तरह का जन्म हमें मिलेगा, जाति मरने के बाद, पेड़ पौधे से लेकर के मनुष्य तक, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो इसका डिसीजन इसी बेस पर होता है कि हमारा कर्म कैसा है, कर्म मतलब कर्मों का संस्कार कैसा है। आयु कितना आयु होगा, 10 साल 20 साल 2 साल 50 साल 100 साल, ये भी हमारे कर्मों से ही डिसाइडेड होता है। भोग सुख भोगेंगे दुख भोगेंगे, अच्छा भोगेंगे बुरा भोगेंगे, ये भी कर्मों से डिसाइडेड होता है। अगला योग सूत्र का अगला सूत्र है, ते लाद परिताप फलाह पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। और वो जो कर्म का फल हमें मिलता है जन्म के रूप में, आयु के रूप में या भोग के रूप में, वो कभी कभी लाद फल होते हैं, प्लेजरफुल होते हैं, खुशी देने वाले, मजा देने वाले, आनंद प्रदायक, परिताप पेनफुल होते हैं, या तो प्लेजरफुल या पेनफुल। किसके आधार पर, कोई रैंडमली, कोई ईश्वर अपने आप करता है, नहीं, पुण्य अपुण्य हेतुत्व, पुण्य कर्म हो, पुण्य क्या है, गंगा में नहाने से पुण्य होता है, नहीं, अच्छा कर्म करना का फल पुण्य है, बुरा कर्म का जो संस्कार बनता है वो पाप है, अच्छे कर्म का जो संस्कार बनता है वो पुण्य है। पुण्य और अपुण्य, अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कारों के कारण तुम्हें अच्छा और बुरा फल मिलता रहता है जिंदगी भर। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिए, हर कर्म का फल मिलता है। कुछ भी हम करते हैं, छुपा के करते हैं, दिखा के करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं या शरीर से, उसका कर्म का फल मिलता है, निश्चित मिलता है। पर कभी कभी कुछ लोग इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, वो हमें सावधान रहने की जरूरत है। वो क्या है, जो कुछ हमारे लाइफ में होता है वो सब मेरे कर्मों का फल है, ऐसा कहीं किसी ने नहीं कहा। किसी शास्त्र में, किसी किसी कर्म सिद्धांत का कर्म सिद्धांत में ये लाइन कहीं नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में जो कुछ घट रहा है वो सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, ऐसा नहीं कर्म फल में कर्म सिद्धांत में कहा गया। क्या कहा गया? तुम कुछ भी करते हो उसका फल तुम्हें मिलेगा, पर लाइफ में बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कारण नहीं होता है। वो हमने इस कर्म सिद्धांत के जो चर्चा में पहले सीरीज में, सेकंड सीरीज में डिटेल में डिस्कस हमने किया था उसके बारे में। अब अगला आते हैं, ये प्रारब्ध कैसे काम करता है। संचित, अगर आपकी संचित को आपने ठीक ठीक समझ गए तो फिर प्रारब्ध आसान है। पर प्रारब्ध को समझने से पहले जो पब्लिक परसेप्शन है वो समझने की जरूरत है। जनरली हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें घटती हैं जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता है। अच्छा आदमी दुखी होता है, बुरा आदमी के साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है, अच्छा आदमी के साथ बहुत बुरा हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि मानो परमात्मा इम्पार्शियलिटी के साथ डिसीजन नहीं कर रहा है, उसकी जस्टिस में खोट है, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर लोगों का डाउट होने शुरू होता है ईश्वर के ऊपर। कुछ लोग मान बैठते हैं ये भाग्य है, बुरा भाग्य है, अच्छा भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं भगवान का कोप है, ईश्वर नाराज हुआ, ईश्वर खुश हुआ। और उससे होता क्या है, कुछ लोग ईश्वर के प्रति गुस्से में आ जाते हैं, भगवान को गालियां देने लगते हैं, ईश्वर नहीं है ऐसा भी एथिस्ट बन जाते हैं, अगर है भी तो उसको भला बुरा कहते हैं। और कुछ लोग फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि ईश्वर की पूजा करना बकवास है, ये जो ईश्वर को मानने वाले सब सुपरस्टिशियस है, ये प्रार्थना वगैरह सब भक्ति करना बेकार है। कुछ लोग नॉन रिलीजियस हो जाते हैं। इन सब के कारण है, वो गलत है सही है ये बात हम नहीं कर रहे, पर ये डेफिनेटली है जो उनको समझाया गया, जिन्होंने भी समझाया, वो रिलीजियन वालों ने, रिलीजियस लीडरों ने, प्रिस्टों ने, प्रिस्ट ने या स्पीकर ने, जिसने भी समझाया या कोई स्क्रिप्चर्स में, वो गलत समझाया गया, गलत फीडबैक दिया गया या लोगों ने खुद गलत समझा, और तभी से ये रिलीजन में इस तरह के प्रॉब्लम आने लगे। बैड फॉर्च्यून और गुड फॉर्च्यून का सीक्रेट ना ईश्वर की नाराजगी या प्रसन्नता में है, ना बैड लक गुड लक में है, ना सामने नींबू और मिर्च लटका देने से बिजनेस अच्छा चलता है, ना परीक्षा के दिन गुड़ शक्कर खाने से, दही शक्कर खाने से रिजल्ट अच्छा होता है, ना सामने काली बिल्ली पास कर जाए तो मामला खराब होता है, इससे कुछ नहीं होता। वो ये जो इरेशनल बिहेवियर है इसका कारण है वो विश्वास, वो आस्था कि सब कुछ ईश्वर कर रहा होता है, सब कुछ नेचर के द्वारा होता है या सब कुछ प्री डिसाइडेड है। यही भाव का, इसी जो मिसपरसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका आंसर है प्रारब्ध। अगर प्रारब्ध को हम समझ जाए तो इस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग से हमें छुटकारा मिलेगा। प्रारब्ध का जो कंक्लूजन क्या है कि ईश्वर कभी विंडिक्टिव नहीं है, ना वो तुम्हारे लाइफ में गुड फॉर्च्यून पैदा करता है, सौभाग्य पैदा करता है, ना दुर्भाग्य लाता है। तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ईश्वर का किया हुआ नहीं है। तुम्हारे लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वो ईश्वर का किया हुआ नहीं है। और संसार में कोई भी चीज वाव चमत्कार नाम का चीज नहीं है, सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट के रूल पर बेस्ड चलता है। कोई बैड लक गुड लक कोई बैठ के सातवें आसमान पर चौथे आसमान पर बैठ के नहीं बनाता है, ना परमात्मा किसी को सजा देता है क्योंकि तुम उसको नहीं मानते हो, तुम किसी चर्च में कन्फेस नहीं करते हो, तुम किसी गंगा में डुबकी नहीं लगाते हो, तुम किसी पर्टिकुलर प्रोफेट को अपना प्रोफेट नहीं मानते हो, उसके कारण वो सजा नहीं देता। ये सब हमारे अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल बिहेवियर, इसी के बेस पर होता है। हम ही अपने जीवन के स्वर्ग हैं और हम ही अपने जीवन के नरक हैं। इनको समझने के लिए प्रारब्ध समझने की जरूरत है। तो प्रारब्ध क्या हुआ? जो हमने पहले से कर रखा था उसका फल अभी मिलने लग गए। आप भूल गए होंगे, वो अलग बात है, वो आपका प्रॉब्लम है। हो सकता है बचपन में, आजकल तो बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए, पर हमारे समय में होता था कि ब्रश नहीं करते थे ठीक से, खूब कैंडी चीनी गुड़ टॉफी वगैरह खाते थे। मान लीजिए आप में से कोई खाता होगा, ब्रश ठीक से नहीं करता होगा, दांत साफ नहीं करता होगा, पिता माता ने बोला होगा देखो दांत साफ नहीं करोगे दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांत टूट जाएगा, दांत खराब हो जाएगा। तो कहेगा देखो कुछ हो नहीं रहा है, सब तो ठीक है, होगा भी नहीं। 10 साल बीता, 20 साल बीता, अब आप समझदार हो गए, अब आप रेगुलर ब्रश करते हैं, सुबह शाम करते हैं, मिठाइयां कम खाते हैं, पर तब भी 40-50 साल के हुए नहीं, आपके दांत गिरने लगे, दांत खराब होने लगे, डॉक्टर ने कहा कि दांत निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने दांत निकल गए। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ भाई 40-50 साल के उम्र में तुम्हारे दांत सब निकल गए, क्या करे किस्मत में है। किस्मत कहां से आया, तुम भूल गए बचपन में कैसा दांत को ठीक रखा था, उसका रिजल्ट आज भोग रहे हो। पर तुम क्योंकि भूल गए बचपन में किए गए कर्मों को, अब आप भाग्य को कोसते हो। स्कूल लाइफ में तुम क्लास छोड़ क्लास अटेंड ना करके भागते थे, दोस्तों के साथ बाजार घूमते थे, मूवी देखते थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। आगे जाकर बड़े हुए, तुम्हारे सारे दोस्त अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए, अच्छा कमाई किया, अच्छा नाम मिला, तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त सब इतने बड़े बड़े हो गए, तुम क्यों नहीं हुए? किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, प्रारब्ध। तुम भूल गया जब स्कूल में तुम्हारे बाकी साथी पढ़ाई कर रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, स्कूल के अलग अलग क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर एक्टिविटीज में रोल कर रहे थे, अपने पढ़ाई को भी ठीक से कर रहे थे, तुम वहां मस्ती कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज उसका रिजल्ट मिल रहा है, उस समय नहीं मिलना था। ये प्रारब्ध है। हर व्यक्ति को जो कुछ भोग रहा होता है हर व्यक्ति, वो उसका कोई ना कोई पुराने कर्म का फल होता ही है। 2 साल किया होगा पहले, 2 साल 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, 20 साल पहले, कुछ ना कुछ जो आज वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध पुराने कर्मों का फल जब मिलने लग जाए तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। वो फल पुराना 2 घंटे पहले का हो, 2 साल पहले का हो, 200 साल पहले का हो, या 2 लाख जन्मों के पहले का हो, कभी भी हो सकता है। इसीलिए ये चार्ट देखिएगा तो जो प्रारब्ध है वो 3 तरह से हमारे सामने आते हैं। हमारा क्रियमाण कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट जरूरी नहीं आज इट इज हो। रिजल्ट डिपेंड करता है कि, रिजल्ट का एक फैक्टर ये भी होता है कि हमारा पुराना कर्म कैसा था, सेकेंड लेक्चर में हमने सुना था, कोई भी काम करते हैं उसमें पांच फैक्टर होते हैं रिजल्ट देने में, पांचवा फैक्टर होता है पुराना कर्म, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। पतंजलि की भाषा में वो प्रारब्ध तीन तरह से हमारे सामने आता है। मेरा जिस तरह के जन्म आज हुआ है, मैं मनुष्य हूं, पशु हूं, पक्षी हूं, कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, मेरे जिस तरह के फिजिकल अपीयरेंस बना है, जिस तरह के मुझे पेरेंट्स मिले हैं, जिस देश में, जाति में, जिस लोकेलिटी में मैं पैदा हुआ हूं, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ हूं, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध है, दैट इज कॉल्ड जाति। और हर व्यक्ति पैदा होने के साथ एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ लाइफ लेकर आता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लेकर आता है, 100 साल लेकर आता है, वो उसका आयु है। क्या भोगेगा? गरीब घर में पैदा होगा, धनी घर में पैदा होगा, टैलेंट लेकर पैदा होगा, विदाउट टैलेंट आएगा, मंद बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि होगी, माँ बाप अब्यूसिव होंगे, प्यारे होंगे, स्कूल अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरह के सराउंडिंग मिलेगा, ये सब भोग है प्रारब्ध से। पर आप मत सोचिए कि ये प्रारब्ध के कारण ही आपकी जिंदगी चल रहा है, नहीं, प्रारब्ध के कारण आप एक गरीब घर में पैदा हुए, अब्यूसिव फैमिली में पैदा हुए, उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग हैं उस गरीब घर में पैदा होने के बावजूद, उस अब्यूसिव पेरेंट्स के पास रहने के बावजूद भी जिंदगी में बहुत बड़े बने, बहुत सुखी, धनी, ज्ञानी, कैसे बने? प्रारब्ध से नहीं, अभी के कर्मों से। आप 50 साल का आयु लेकर आए हो पुराने कर्मों के कारण, आप चाहे वो 50 साल को 5 साल कर सकते हो अपने व्यवहार से, 50 साल को 100 साल बढ़ा सकते हो। उस प्रारब्ध को कम करना या बढ़ाना ये हमारे हाथ में होता है। हजारों लाखों उदाहरण हम देखते हैं, गरीब घर का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, मेड का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा पढ़ लिख करके बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, आगे जाकर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े फिलोसोफर, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन बन जाते हैं। कैसे? प्रारब्ध से नहीं। उनको मत बोलिए जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े, जब आप कहते हैं इसका भाग्य में था, आप उसको गाली दे रहे हो। हर सक्सेसफुल आदमी को मत बोलिए कि ये उसका किस्मत था, क्योंकि तुम नहीं बन पाए, किस्मत नहीं, हार्ड वर्क। पर बहुत लोगों ने अपने किस्मत को, प्रारब्ध को भी अपने अभी के कर्मों से बदल के आगे बढ़े हैं, और ठीक उल्टा भी होता है जी। बहुत बड़े घर में पैदा हुआ, बहुत पैसा है, सारे माँ बाप बहुत एजुकेटेड है, अच्छे पेरेंटिंग है, माँ बाप भी बहुत प्यारे हैं, सब सुविधाएं दी, अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, जो चाहिए सब कुछ है, उसके बावजूद भी आगे जा करके आदमी कंगाल की तरह रहता। अगर आजकल अगर आप भारत जाएं, जो पहले नवाबों की होता था, लखनऊ, हैदराबाद वगैरह, वहां आजकल कभी कभी मिल जाते हैं। एक आदमी लखनऊ में मिला, चाय बेच रहा था, बड़ा गरीबी गरीब झोपड़ी में रहता था, पूछा, बातचीत में पता चला वो किसी नवाब के खानदान का। भाई, नवाब का खानदान होकर के तो इतनी गरीबी में जी रहे हो, और तुम्हारे जैसे गरीबी में जीने वाले लोगों के बच्चे नवाब बन चुके। तो प्रारब्ध और क्रियमाण, ये दोनों एक दूसरे को सप्रेष भी करते हैं। आपका अभी का कर्म, अच्छा कर्म अगर ज्यादा पावरफुल हो, डोमिनेटिंग हो, आपके प्रारब्ध दब जाएंगे, बुरे प्रारब्ध। क्रियमाण, बुरा क्रियमाण अगर, अभी के कर्म अगर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, पुराने अच्छे कर्म दब जाएंगे। और अगर अभी का कर्म बुरा या अच्छा अगर बहुत वीक हो, तो प्रारब्ध हावी हो जाएगा, फिर आप कहोगे किस्मत है। तो यह आपको समझने की जरूरत है, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ केवल और केवल पास्ट कर्मों से, पुराने कर्मों से होता है, नहीं, अभी के कर्म और पुराने कर्मों का जो मिक्सचर होता है उससे आपकी ये पर्सनालिटी जैसा भी आज है वो उसी से होता है। अगला है कि जो हम एक काम करते हैं पर रिजल्ट अलग अलग मिलता है। क्यों? पांच लोग एक काम करते हैं, अलग अलग रिजल्ट है। प्रवचन की दूसरे सीरीज में हमने इसका डिस्कशन किया था, यहां संक्षेप में इसकी बात करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर काम करने वाला व्यक्ति और जिस हर काम एक जैसा नहीं होता है, उस काम के पीछे हर एक का इंटेंशन अलग है, इंटेंशन की इंटेंसिटी में फर्क होता है, काम को करने के तरीके में फर्क होता है, उसका टाइम प्लेस सिचुएशन वगैरह फर्क होता है, उसके कारण एक काम एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो मैं इतना दान दिया, इतना लोगों का भला किया और उसने भी किया, उसको तो बहुत सुखी है, सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं कुछ अच्छा हो रहा है। ऊपर से तो लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं कि अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, क्योंकि ऊपर का कुछ व्यवहार देखा, अंदर क्या चल रहा है वो तो उसी को पता, परमात्मा को पता। वो आदमी कैसा है वो तो किसी को नहीं पता, वो देते समय क्या सोचता था, कितना देता था, किसको देता था, कब देता था, ये सब मैटर करता है। तो एक काम हजारों फल दे सकता है, उसमें प्रभु का कोई रोल नहीं। प्रभु ना गुस्से में प्यार से आपका काम बनाते हैं, नहीं, प्रभु परमात्मा तो कर्म फल दाता है, जैसा कर्म करो वो उसी हिसाब से आपको फल देता है, ना कम देता है ना ज्यादा देता है, किसी का ना मारता है छिनता है ना किसी को वो कभी ज्यादा देता है, सबको उतना ही देता है जितना जिसकी जरूरत है। योग दर्शन का ये सूत्र अगर आप समझ जाएं तो काफी आपको आसान होगा कर्मों के बारे में। कहते हैं वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृद मध्याधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। योग सूत्र सेकंड चैप्टर में 34th सूत्र है। ये सूत्र तो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आया था, पर कर्म एक कार्य कैसे अलग अलग तरह के रिजल्ट देता है, बा एक कार्य को करते समय किस तरह के रिजल्ट आते हैं वो समझने में आसान होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने तो मारा नहीं, मारा तो उसने था, तो आपने क्या किया था? उसने पूछा था मारने से पहले मैं मारूं, मैंने कहा मारो क्या फर्क पड़ता है, तुमने क्या किया था? मैंने नहीं मारा था, बस वो जो मार रहा था मैं ताली बजा रहा था, बहुत बढ़िया और करो और करो, या जो मार चुक करके आया था मैं उसको कहता था मारने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना मारना है मारो, तुमने नहीं मारा नहीं मारा, तुम्हारा क्या रोल है? तुमने मारा था? जी मैंने भी नहीं मारा था। क्या किया था उसने? जो मारा था गाय को, बकरी को, भेड़ को, कुत्ते को, जिसको भी, वो जो मारा था उसको मैंने पका के खाया था, उसका मांस खाया था, पर मैंने मारा नहीं था, पाप मुझे क्यों लगेगा? बिल्कुल सही। भाई जी तुमने क्या किया था? जी मैंने भी कुछ नहीं किया था। फिर तुमने मारा? नहीं मैंने नहीं मारा, पर मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रहा है, सजा क्यों मिल रहा है, बुरा क्यों मेरे साथ हो रहा है? क्योंकि तुमने उसको फॉर्मूला दिया होगा कैसे मारते हैं, ट्रेनिंग दी होगी। तो योग दर्शन का सूत्र कहता है हिंसा आदि, एक एग्जाम्पल लिया हिंसा, वायलेंस, आप इसमें बाकी चीजें जोड़ दीजिए, सच बोलना ना बोलना, हिंसा करना ना करना, खाना खाना नहीं खाना, अच्छा खाना खाना, बुरा खाना खाना, कुछ भी हिंसा की जगह कुछ भी जोड़ दीजिए, उसके रिजल्ट कितने लोगों को मिलता है और किस रूप में मिलता है। कृत, जिसने किया उसको भी मिलेगा उसका रिजल्ट, कारित, जिसने करवाया उसको भी मिलेगा, अनुमोदित, जिसने उसको परमिशन दिया या उसको एनकरेज किया, मोटिवेट किया, बहावाई दिया, उसको भी कुछ रिजल्ट मिलेगा जी, हिस्सा उसका भी है। तो इस तरह के जो काम हम करते हैं, हिंसा या कोई भी, हमने यहां सिर्फ हिंसा का एग्जांपल लिया, तो जितने लोगों ने मारा सबको एक जैसा रिजल्ट मिलेगा? बोले नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। क्यों? फिर दूसरा है कि क्यों मारा? लोभ से मारा, लालच के कारण मारा, क्रोध गुस्से के कारण मारा, मोह इल्यूजन के कारण मारा, या और भी कोई फैक्टर रहा, वो सब फैक्टर काउंटेड होंगे। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम चारों ने लालच के कारण मारा, रिजल्ट बराबर होगा? नहीं जी। फिर मृदु, मध्यम, अधिमात्रा, जो आपने मारने का काम किया वो कैसा था? माइल्ड था, मिडिल लेवल का था, उसकी इंटेंस था, कैसा था? बोले इतने में हो जाएगा? नहीं, और भी है क्या? मारने के पीछे आपने फोर्स कैसे यूज किया वो तो ठीक है, आपके माइंड में इंटेंशन में क्या चल रहा था, वो इंटेंशन माइल्ड था, मिडिल था, इंटेंस था, जिस काम को किया उसमें कितना आपने किस तरह के तरीके से किया, आसानी से मारा, टर्चर करके मारा, बहुत टर्चर करके मारा उसमें। तो इस तरह योग सूत्र कहता है एक कर्म के लिए हजारों लाखों क्राइटेरिया हो सकते हैं, और उन हजारों लाखों क्राइटेरिया में सबको कोई ना कोई फल मिलेगा, एक जैसा फल मिलेगा नहीं, वो डिपेंड करता है किस तरह का आपका उसमें शेयर है। पैसा लगाते हैं ना कंपनी में, किसी का 50% शेयर है तो उसको 50% मिलेगा जो बेनिफिट होगा, किसी का 0.0005% है तो उसको उतना ही मिलेगा, बराबर कैसे मिलेगा भाई? इसीलिए जो दुख है, यहां दुख है आप इसको सुख में भी रखिए, हिंसा के जगह अहिंसा कर लीजिए, समझने की जरूरत है। तो दुख सुख का जो ज्ञान है ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें अनंत ऑप्शंस खुले होते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। इसलिए किसी को जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो परमात्मा ही देखता है, और हमारी परमात्मा के बाद अगर कोई दूसरा है वो हमारा माइंड है, जहां ये सब चीजें स्टोर होकर के रहता है। इसलिए ये ऋग्वेद का मंत्र कहता है, हम रोज बोलते भी हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दता ज्ञता जानता संगमे मही। इसका सिंपल मीनिंग है, मे वी एवर परस्यू आवर पाथ प्रॉस्पेरिटी लाइक द सन एंड मून, मे वी मूव इन फुल कोऑपरेशन in mutual give and take without causing injury to each other and in the mutual right understanding. Swasti pantham anucharema, acche raste par chalenge, kaise suraj aur chand ke tarah, kya den len karenge, koi hame deta hai hum kisi ko denge, kisi ko nuksan pahunchaye bina kaam karenge, ek dusre ko samjhenge, thik thik samjhenge, इसी के साथ अगर काम करेंगे तो हम भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश होंगे, हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमें अच्छा फल मिलेगा, जितना ज्यादा अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। अगले बार हम समझेंगे पुनर्जन्म क्या होता है।